సిద్ధిభ్యః ఓం నమః సిద్ధిభ్యః ఓం నమః సిద్ధిభ్యః జ్ఞాన శక్తి కోటి సూర్యరన్ను మీరిదే మత్తు యార దివ్య ధ్వనియు లోక హితవ మాడిదె మూరు లోకదల్లి యార కీర్తి వ్యాప్తవాగిదె అంథ దేవ దేవరల్లి నన్న తలయు బాగిదె ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಕಲ್ ಸುನಾಯಾ ಥಾ ಶ್ರಾವಕ ಕೆ ತೀನ್ ಭೇದ ಹೋತೆ ಹೇ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಶ್ರಾವಕ ನೈಷ್ಠಿಕ ಶ್ರಾವಕ ಔರ್ ಸಾಧಕ ಶ್ರಾವಕ. पाक्षिक श्रावक का स्वरूप क्या है तो ये कहना चाहिए जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित अहिंसा धर्म के पक्ष में तथा रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग के पक्ष में श्रद्धावान होकर पंच स्थूल अनुवृतों का पालन और मध्य मांस मधु इन तीन मकारों का त्याग करता है, ऐसे आठ मूल गुणधारी श्रावक को अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक कहना चाहिए. जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का पक्ष परमार्थ वाला पक्ष होता है और छद्मस्त कथित अहिंसा वाला पक्ष वह परमार्थ का बोधक न होने से वह श्रद्धेय नहीं है. वह भौतिक और सामाजिक एक व्यवस्था के हेतु कहीं भी स्थूल हिंसा का त्याग, पाप मत करो ये अन्याय है, अन्याय मत करो, इस प्रकार का एक बाहरी भौतिक सांसारिक जीवन की सुव्यवस्था के लिए न्याय के मार्ग पर चलने का उपदेश तो हर जगह प्राप्त होता है, किंतु देखो ये म्लेच्छखंड में भी है. न्याय अन्याय को नहीं जानते ऐसा नहीं है. न्याय से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए. न्याय के बिना समाज नहीं चल सकता, न्याय के बिना मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता. एक भौतिक जीवन को भी सुखी बनाने के लिए समाज में न्याय से चलना पड़ता है, हिंसा से बचना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है. इतना सब कुछ करते हुए भी वहाँ कर्मों का संवर नहीं, 41 प्रकृतियों का संवर कहाँ है. हाँ, आप परमार्थ सापेक्ष इन व्रतों को धारण करते हैं, परमार्थ सापेक्ष इस न्याय मार्ग पर चलते हैं तो वो संवर का कारण बनता है, सम्यक दर्शन का कारण बनता है. इसीलिए यहाँ पर कहना पड़ा है कि जिनेंद्र भगवान कथित अहिंसा के पक्ष में जो आता है, चाहे वह पक्ष सामाजिक हो, व्यावहारिक हो, चाहे आंतरिक हो, आत्मा से संबंधित हो, किसी भी संबंध से आप विचार करेंगे तो भगवान का जो मार्ग है कहा हुआ वह स्वहित के लिए है. अपने हित के लिए क्या क्या करना चाहिए उसको यदि हम करने लगते हैं तो वह परमार्थ का पक्ष हो जाता है। परमार्थ पक्ष सापेक्ष बाह्य पक्ष जो होता है न्याय का, सभ्यता का, संस्कृति का, परंपरा का, कुछ भी होता है बाहर का, तो वह धर्म की कोटि में आता है। भगवान ने जिस मार्ग को प्रतिपादित किया है वह एकांगी नहीं है, उसमें दोनों पक्ष हैं, परमार्थ पक्ष भी है और भौतिक पक्ष भी है। भौतिक पक्ष में भी हम अहिंसक बने और परमार्थ पक्ष में भी हम अहिंसक बने, ये उनका उपदेश है। भौतिक पक्ष से अहिंसक बनाना और अहिंसक मार्ग से चलाना ये हर जगह होता है, कहां नहीं है, मिलेच्छ खंड में भी है। जहां मनुष्य है वहां वो भौतिक परिसर को सुखमय बना करके चलना चलता ही है, किंतु परमार्थ का बोधक, परमार्थ के उपदेशक कौन है? हाँ, आर्य खंड में ही इसका उपदेश हुआ है। भीतर का जो उपदेश हुआ है वो केवल आर्य खंड में ही हुआ है, बाहर बाहर का उपदेश तो हर जगह हुआ है, होता ही है, तीन लोक में कहाँ नहीं है। शरीर भौतिक है और इसको सुखी रखने के लिए जो कुछ अच्छे काम करने पड़ते हैं वो सब जगह करते हैं। शरीर के लिए दुख ना हो, शरीर के लिए यातनाएं सहन करनी नहीं पड़े, ऐसे कार्य करो, संकट ना आए भविष्य में, ऐसा काम करो, तो ऐसा काम का उपदेश हर जगह होता है। लेकिन भगवान इसका भी उपदेश देते हैं और परमार्थ का भी उपदेश देते हैं। भगवान का उपदेश देना यह परमार्थ की सिद्धि के लिए है। बाहर से तुम ठीक चलो, ये जो कह रहे हैं, भौतिक मार्ग को व्यवस्थित रखो, ऐसा जो उपदेश हो रहा है ये भगवान का परमार्थ की सिद्धि के लिए हो रहा है। तो अंतरंग सापेक्ष बहिरंग उपदेश है, वहां हर जगह, जहां कहां, जहां तहां भी, वहां पर क्या है, अंतरंग निरपेक्ष बहिरंग उपदेश है, इतना फर्क है। और इसलिए ये कहना पड़ेगा कि मिलेच्छ खंड में आठ मूल गुण के धारी है क्या नहीं, ये यदि आप विचार करेंगे तो ये मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, हो सकते क्या होंगे ही। जिसको परिग्रह में पंच पापों में सीमा नहीं है वो अतिभोक्तावादी बनेगा और वो संग्रह ज्यादा करेगा, और एक व्यक्ति ज्यादा संग्रह करता है तो समाज सुखी नहीं रह सकती, आसपास के लोग दुखी होंगे, सबको बाहरी सुख सबको समान रूप से चाहिए है, तो अपने को परिग्रहवाद को छोड़ना पड़ेगा। संग्रह वृत्ति, संग्रह बुद्धि जो होती है, इस संग्रह के कारण से परिसर भी दुख में पड़ता है। एक उदाहरण छोटा सा इसके लिए समझ में आता है, कृष्णा नदी, पंचगंगा नदी बहती है, उसी के वजह से सारे किसान लोग सुखी हैं, फसल उगाते हैं, पानी सतत बहता है और कम पड़ता है तो ऊपर से छोड़ते भी हैं। कहां से? ऊपर से, स्वर्ग से नहीं, उधर से डैम से छोड़ते हैं, और डैम के आसपास भी समाज बसी हुई है, गांव बसे हुए हैं, तो वहां पर भी उसी का पानी मिल रहा है। अगर डैम वाले कहे कि हमको गर्मी में कम पड़ता है पानी और तुम लोगों को बिल्कुल एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, और इस अव्यवस्था के कारण से लोग पीड़ित रहेंगे। तो बाहरी व्यवस्था तो सब जगह बनाते, सभी सुखी रहे, इसके लिए प्रयत्न किया ही जाता है। भगवान का भी यह उपदेश है कि किसी को बाहर से दुखी मत रखो। ये क्या समाजवाद नहीं है? समाजवाद है, किंतु भगवान के उपदेश को जहां हम तिरस्कृत करेंगे, यहां या तो जहां जो व्यवस्था अच्छी है उसको तिरस्कृत करेंगे, तो वहां पर परिग्रहवाद आ जाता। तिरस्कार क्यों होता है? परिग्रहवाद के कारण से। अति आशा, अति आशी गति गेडिशितु, कन्नड़ में कहा है, अति आशा करेंगे तो बाहर की भी गति बिगड़ जाती है और अंदर की भी। मराठी में क्या कहते हैं? अति आशी गति गेडिशितु, अति आशा, अति तेते माती, अति तेते माती, वही होता है। तो यहां पाक्षिक श्रावक का जो स्वरूप भगवान ने बताया है वह अंतरंग सापेक्ष है, परमार्थ सापेक्ष कथन है। और पाक्षिक श्रावक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित बाह्य अहिंसा रास्ता ही मैं अपनाऊंगा, ये संकल्प चाहिए, तब सम्यक दर्शन होगा। अहिंसा का उपदेश तो सबने दिया है, बाहरी अहिंसा का उपदेश हर जगह है, लेकिन उनके अहिंसा के श्रद्धालु आप बनते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के द्वारा कहा हुआ चाहिए, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्यामी, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, लोक में वही उत्तम है। क्यों है? उनकी वाणी लोक में उत्तम क्यों कहलाती है? वो अंतरंग को भी सुखी बनाती है, बहिरंग को भी। किंतु छद्मस्त प्रणीत मार्ग वो निश्चित रूप से नियम से अंतरंग निरपेक्ष कथन ही रहता है, इसलिए वह अमंगल है। जिसमें दोनों पक्ष हैं, अंतरंग और बहिरंग, वो मंगल है। जिसमें एकाकी एक ही पक्ष का उपदेश हुआ है वो अमंगल है, इसलिए वो शरण जाने योग्य नहीं है। कितनी सूक्ष्म बात है ये, कितनी बड़ी बात है। ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि भगवान का ही क्यों माने हम? अहिंसा तो अहिंसा है, कहीं भी मिल जाए उसको ले सकते हैं। तो बाहरी अहिंसा तो हर जगह मिल सकती है, उसको उठा करके ले लोगे जीवन में तो परमार्थ का ज्ञान तो होने वाला नहीं है। अंतरंग का कथन वहां है नहीं, अंतरंग की सिद्धि के लिए ही वह बहिरंग कार्य होता है। तो बहिरंग कार्य तो अहिंसात्मक कार्य कहीं भी प्राप्त हो सकता है, म्लेच्छ खंड में भी है। जीवों को नहीं मारना, नहीं मार रहे, रक्षण ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पशुओं की संख्या कम होगी तो हमको प्रॉब्लम आएगा भौतिक जीवन जीने के लिए, इसलिए नहीं मारते। स्वार्थ है, अपने भौतिक स्वार्थ के लिए नहीं मारते। तो अहिंसा की कोटि में आएगा क्या? धर्म की कोटि में आएगा क्या? नहीं। तो इसलिए वो छद्मस्त प्रणीत मार्ग, न्याय मार्ग या अहिंसा मार्ग, जीव रक्षा का मार्ग धर्म नहीं कहलाता, धर्म की कोटि में नहीं आता। ये धर्म के कोटि में आता है।
छद्मस्त वाणी करने वाले
नहीं, गलत मार्ग पर कहाँ चल रहे हैं, वो तो अहिंसा से ही चल रहे हैं। वो अहिंसा का उनका मार्ग भी स्वीकार के योग्य नहीं है, ये बताया जा रहा है। गलत चलना तो यहाँ हो या वहां हो, वो तो चलना ही नहीं चाहिए, वो तो है ही। ठीक भी चल रहे हैं, यहाँ के वो वहां के हों, यहाँ के ठीक चल रहे हैं तो इसको स्वीकार करने योग्य है, वहां ठीक भी चल रहे हैं तो वो स्वीकार के योग्य नहीं है, जो अहिंसा तत्व है, क्योंकि वह स्वार्थ के लिए होता है, भौतिक सुख सुविधा की सिद्धि के लिए होता है। इसलिए पाक्षिक श्रावक, पाक्षिक श्रावक की परिभाषा ये है, वो सर्वप्रथम बहिरंग आठ मूल गुणों को धारण करे, ये पहला कर्तव्य। सम्यक दर्शन धारण करे या न करे, सर्वप्रथम क्या करे, आठ मूल गुणों का धारण करे। तो जिनेंद्र भगवान के पक्ष से जो उपदेशित किया गया है आठ मूल गुण, अहिंसा का मार्ग, अहिंसा का मार्ग आठ मूल गुण रूप जो अहिंसा का मार्ग है, उसको जिनेंद्र भगवान ने जो जैसा कहा है, जिस रूप में कहा है, उस रूप में ही स्वीकार करे। अब सम्यक दर्शन स्वीकार करते नहीं करते हैं बाद की बात है, लेकिन करे तो पहला यही करे, जिनेंद्र भगवान के आठ मूल गुणों के उपदेश को ही धारण करे, ये पहला आवश्यक है। ठीक है, ऐसा किया लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, यानी 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन हम मान लो नहीं कर रहे हैं, तो आठ मूल गुण तो अपने जीवन में आ गए, तो इससे हमको क्या लाभ मिला? तो कम से कम ये लाभ मिला कि हम अन्यायपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हम संतोष वृत्ति वाले बन जाते हैं, पंच पापों में एक आदर्श मानव बन जाते हैं, आदर्श मानव, एक मानवता आती है हमारे पास, ये लाभ है। अमानवीयता छूट जाती है, मानवता आती है, यह मानवता मानव सभ्यता है, मानव संस्कृति है। इस संस्कृति सभ्यता को छोड़ेंगे तो हम धर्म धारण करने के पात्र ही नहीं बनेंगे। धर्मात्मा बनाने से पूर्व व्यक्ति को क्या बनाए, एक मानव बनाए, ये धर्मात्मा तो बाद में बने वो, परंतु धर्मात्मा बनने से पूर्व क्या बनाए, एक आदर्श मानव बनाए। तो आदर्श मानव कौन है, उनके आचार विचार क्या हैं? तो आठ मूल गुणों का पालन करे, तीन मकार त्याग, मध्य मांस मधु त्याग। व्यक्त रूप से जो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है और मधु का सेवन करता है, इसको क्या मानव कह सकते हैं? नहीं है, ये मानव नहीं है, दानव, दानव। मानव और दानव में क्या अंतर है? दानव का दूसरा नाम राक्षस भी है, राक्षस। राक्षस क्या है? सबको भक्षण करता है, कुछ विचार नहीं रहता उसको, बहु आ गया तो खलास, राक्षस। तो मनुष्य की वृत्ति राक्षस की वृत्ति है तो वह धर्म धारण करने का पात्र नहीं है, पहले उस राक्षस वृत्ति को त्यागना पड़ेगा। कम से कम मांस मदिरा और मधु मद, इतना तो त्याग होना ही चाहिए, इसके बिना तो हम मानव कुलाचार की कोटि में भी नहीं आ सकते। जैन कुलाचार तो छोड़ो, बाद की बात है। जैन कुलाचार वो है कि हम जन्म से लेकर अपने माता पिताओं से ही संस्कार लेकर के आए हैं। कैसे संस्कार? आठ मूल गुणों के संस्कार। हमारे घर में मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, कोई नहीं, कब से? कुल परंपरा से, ये परंपरा है हमारी, तो ये जैन कुलाचार है। और मानव कुलाचार क्या है? यहां पर परंपरा से कोई मतलब नहीं रहता, जन्म के पश्चात हम मानव है या दानव है, अगर आठ मूल गुणों का पालन कर रहे हैं तो मानव हैं, और नहीं पालन कर रहे हैं तो दानव हैं। तो ये सामान्य लोगों के लिए, पर जैन कुलाचारी एक व्यक्ति को जिसका जन्म जैन कुल में पैदा हुए हैं या जैन कुल में पैदा हुआ है, उनके लिए जन्म के पश्चात मांस त्याग करना चाहिए क्या? नहीं, ये जैन कुलाचारी नहीं। जैन कुल में पैदा हुए हो तो तुम्हारे घर में जितने थे वंश परंपरा से, वे कभी मांस नहीं खाए, ये होना चाहिए था, तब वो जैन कुलाचारी। ऐसे कुल में जिसका जन्म हुआ है जहां पर मांस मदिरा का सेवन नहीं होता था, वो जैन कुलाचारी, और वह भी अरहंत भगवान के उपदेश से, जो आठ मूल गुणों का उपदेश था उसके अनुसार चलते थे वंश परंपरा वाले, तो वो जैन कुल है। वो उसमें हमने जन्म ले लिया तो हम जैन कुलाचारी नियम से कहलाएंगे ही, क्योंकि हम भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, नहीं करते। अन्यथा ऐसा मांस मदिरा का सेवन न करने वाले म्लेच्छखंड में भी मिलेंगे। अमेरिका में 60-70% हैं, वो मानव कुलाचार में आ सकते, परंतु स्वार्थ के लिए होता है। एक बार पेपर में आया, क्या आया कि गायों को कुछ खाद्य पदार्थ खिलाया और वह उसको खिलाने से वो विष फैल गया। तो उन प्राणियों को जो पालते थे, अपनी रक्षा के लिए उन प्राणियों को जलाया गया। तो पाल तो रहे हैं, लेकिन इसके पालने के साथ उद्देश्य क्या है उनका, उस पर डिपेंड होगा ना। जीवों के प्राणों की रक्षा के लिए नहीं पाल रहे हैं, दया भाव से नहीं पाल रहे हैं, वहां तो स्वार्थ के लिए। अगर हमारे ऊपर संकट आया तो इनको मारने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसी सभ्यता तो वहां है, लेकिन ये सभ्यता, वास्तविक सभ्यता की कोटि में नहीं आती, वो मिथ्या है। यहां सम्यक है, आचार विचार यहां सम्यक होते हैं। पाक्षिक श्रावक यहां आगे पढ़ेंगे। पाक्षिक श्रावक के आठ मूल गुणों में सप्त व्यसन त्याग का व पंच उदंबर फलों के त्याग का अंतर्भाव होता है, जिन्हें अगले प्रश्न के अंदर बताया गया है। आठ मूल गुणों का पालन करना जैन कुलाचार कहलाता है। यह आठ मूल गुण सम्यक दृष्टि जीवों में और मिथ्या दृष्टि जीवों में भी पाए जा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों की कुल परंपरा में यदि जैन कुलाचार रूप आठ मूल गुण हो तो वे उसका अनुकरण मात्र करते हैं, और यदि वे आठ मूल गुण उनकी परंपरा में नहीं हो तो वे उनका अनुकरण भी नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में वे जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात भी जैन कुलाचारी नाम नहीं पाते। सोचने की बात है, जैन कुलाचार नाम तब ही पाएंगे जब आचरण में हो, आठ मूल गुणों का आचरण हो और उनका अनुकरण हम अपनी आत्म सिद्धि के लिए, परमार्थ की सिद्धि के लिए कर रहे हों तो जैन कुलाचारी, अन्यथा इन आठ मूल गुणों का पालन हम भी शरीर के वास्ते अपने शरीर को सुखी रखने के लिए पालन कर सकते और शरीर पर जिस दिन कष्ट आया इन 8 मूल गुणों को छोड़ सकते। तो ये धर्म की कोटि में इसलिए नहीं आते। अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक को क्या क्या आचरण करना चाहिए, चौथे गुणस्थान वर्ती। सुन लो, जो चौथे गुणस्थान में आना चाहते हैं, पंचम गुणस्थान में आने वालों को प्रतिमाओं का वर्णन करना है, पहले चौथे गुणस्थान में कैसे जाना ये पहला सुन लो। चौथा ही नहीं हुआ तो फिर पंचम कैसा होगा। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक को 25 दोषों से रहित सम्यक्तों का पालन करने के साथ 8 मूल गुणों का पालन करना चाहिए। वह जैन कुल की मर्यादा के कर्तव्यों का भी श्रद्धा से पालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार है। दो बातें हैं, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक 8 मूल गुणों को धारण किए बिना तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती बनने का पात्र नहीं कहलाता। पहले 8 मूल गुणों का पालन करना पड़ेगा। तो कर रहा है, किस लिए कर रहा है? चौथे गुणस्थान में जाना है इसलिए कर रहा है। तो ये क्या हो गई, ये आत्म कल्याण करना है, ये भावना जग गई। तो आत्म कल्याण के दृष्टिकोण से यदि 8 मूल गुणों को धारण कर रहे हैं तो ये सफल होंगे आत्म कल्याण के मार्ग में। अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक को 25 दोषों से रहित सम्यक्तों का पालन करने के साथ साथ 8 मूल गुणों का पालन करना चाहिए। जैन कुलाचार की मर्यादा के कर्तव्यों का भी श्रद्धा से पालन करना चाहिए। तीसरी बात है, पहली बात सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित हो, उन दोषों को त्याग दिया तो सम्यक्त के बहिरंग लक्षण हमारी चर्या में प्रकट हो गए। बहिरंग लक्षण, अंतरंग लक्षण क्या? सम्यक दर्शन का अंतरंग लक्षण अनंतानुबंधी कषाय को त्यागना, यानी कोई भी धार्मिक कार्य को भौतिक सुख के लिए नहीं करना, बस इतना ही। इससे अनंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा। भौतिक सुख की कामना से कोई भी 8 मूल गुण आदि ये बाहरी आचरण को स्वीकार नहीं करना। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? सम्यक दर्शन का अंतरंग लक्षण जो अनंतानुबंधी के अभाव से उत्पन्न हुआ, ये सम्यक्तों का अंतरंग लक्षण है। बहिरंग लक्षण क्या है? हम अनायतनों से सदा बचते हैं। सरागी देव, सरागी गुरु और सरागी शास्त्र, यानी असयमी गुरु, असयमी देव और असयम पोषक शास्त्र, इन तीनों से बचना, ये अनायतन का त्याग कहलाता है। अनायतन यानी कल्याण का जो स्थान नहीं होता वो अनायतन कहलाता है, और जो कल्याण का स्थान होता है वो आयतन कहलाता है। तो कल्याण का स्थान कहाँ है? वीतरागी पर, वीतरागी के सानिध्य में हमारा कल्याण संभव है। कल्याण की बातें वहीं से मिलेंगी, इसलिए वो आयतन है। अनायतन के पास कल्याण की बातें मिलेंगी क्या? रागी गुरु है, तुम राग छोड़ो ये कहेंगे क्या? वो वीतरागी बनो कहेंगे क्या? इसलिए रागी देव भी है तो रागी देव ये कहेगा क्या कि तुम वीतरागी देव बन जाओ? नहीं, रागी को देखने से राग का ही उपदेश मिलता है और वीतरागी को देखने से राग का ही उपदेश मिलता है। इसलिए इन तीनों को आयतन और इनके विरुद्ध को अनायतन कहा। इसको विस्तार से देखते देखो, सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। वो कौन कौन हैं पूछ रहे थे ना आप लोग, ये देखो, यहाँ पर संग्रहित रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में जो लिखे हुए हैं वहां से संग्रह करके यहाँ लिखा है, समय ज्ञान संस्कार पुस्तक में है ये। समय ज्ञान संस्कार पुस्तक सबके पास है ना, तो उसमें पढ़ सकते हैं, छठे पाठ में है। सम्यक दर्शन के 25 दोष निम्न प्रकार हैं, कौन कौन से, शंखा आदि 8 दोष और 8 मद दोष, 6 अनायतन दोष और 3 मूढ़ता दोष। इस प्रकार 4 स्टेप में 8 8 6 और 3 ऐसे 25 होते हैं ये। शंकादि दोष का मतलब जो धर्म के विषय हैं, तत्वों के विषय हैं, परमार्थ के विषय हैं, आत्मा के विषय हैं, कर्म सिद्धांत के विषय हैं, इन विषयों में शंका नहीं करना, संशय नहीं करना। संशय करना ये सम्यक्तो का दोष है, संशय नहीं करना ये सम्यक्तो का लक्षण है, अंग है, गुण है। सम्यक्तो का गुण जो होता है वह हमारा हित करता है, और सम्यक्तो का जो दोष होता है वह हमको सम्यक्तो से च्युत कराता है। समझ में, एक एक दोष हम बताएंगे। देखो, शंका दोष, शंका दोष किसको कहते हैं, सर्वज्ञ वाणी में संशय करना, भगवान ने पुण्य पाप कर्म सिद्धांत का उपदेश दिया और इस पर हमारी दृष्टि अनादिकाल से रही नहीं, हमारी दृष्टि बहिरंग दृष्टि बनी हुई है, जब भी कुछ हमारे ऊपर संकट आता है तो हम दूसरे को ही दोष देते, यह हमारी परंपरा है पहले पासों की। हम कर्मों पर, अपने कर्मों पर दोष नहीं देते। आदिनाथ भगवान आहार के लिए उठे और उनको आहार 6 महीने तक नहीं मिला, लोगों को दोष दिया होगा कि ये लोग आहार देना ही नहीं जानते। आदिनाथ भगवान ने दोष दिया क्या, क्या सोचते होंगे वो, हमारा पाप कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, कभी न कभी हमने किया है, ये उदय में आया हुआ है, लोग क्या कर सकते हैं बेचारे, उनका कोई दोष नहीं। ऐसे चिंतन करते थे कि उल्टा करते थे। हाँ, आप लोगों को भी ऐसा ही चिंतन करना, जब सम्यक दर्शन धारण करेंगे तो ऐसा ही चिंतन करना, कोई भी आपके लिए विपरीत माहौल आ रहा है तो उससे आप बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस माहौल में रहेंगे तो हमारे भाव बिगड़ सकते हैं, और तो भाव ना बिगड़े इसलिए बच के रहो, ये तो बात मान्य है, किंतु यही हमको दुख देते हैं इसके वजह से ही होता है, ऐसी मान्यता हटाओ। हाँ, ये है, मान्यता हटाओ, क्योंकि ये मान्यता मिथ्या है। पर कोई भी हमको दोष देता नहीं, मालूम नहीं था, अज्ञान, व्यवस्था नहीं थी। नहीं, आदिनाथ भगवान ने सोचा कि इनको तो वैसे ही ज्ञान नहीं है, और मिलने वाला आहार इन्हीं से, ज्ञान हो न होने के बाद भी, पर कब मिलेगा, ज्ञान होने के बाद, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मिलने वाला है नहीं। और ज्ञान उनको कब होगा, जब हमारा अंतराय कर्म हटेगा। वो नियम से होगा। देखो, कर्म के गणित के अनुसार ही सब कुछ बाहर परिवर्तन होगा ना, जब अंतराय कर्म का क्षोभम बढ़ा तब राजा श्रेणी को जाति स्मरण हुआ और ज्ञान आया, और कर्म का क्षयोपशम ही नहीं होता तो उनको जाति स्मरण भी नहीं होता, और खिंचता समय, तो कर्म एक एक साल तक का बंधा हुआ हो तो 6 महीने में आहार मिल जाएगा क्या, नहीं, एक साल खिंचेगा ही, और एक साल तक किसी को ज्ञान, वो कर्म ज्ञान होने ही नहीं देगा। ऐसा माहौल बनेगा ही नहीं। कर्म सिद्धांत है, देखो इस सिद्धांत का उपदेश किसने दिया? भगवान ने दिया है, फिर इसके ऊपर शंका करोगे? हाँ, भगवान क्या कहते हैं? हम पहले पासुन ऐसा ही कहते आए हैं, सभी लोग यही कहते हैं। ये लोक मूर्ता है, ये लोक मूर्ता में आया, पर दोष देते हैं ये कहना भी लोक मूर्ता है, क्योंकि लोक में सुना हुआ ज्ञान है, वो लोक से प्राप्त ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और भगवान से प्राप्त किया हुआ ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है वो। लाइट गई क्या? हाँ, शंका दोष, सर्वज्ञ वाणी में संशय नहीं करना, ये सम्यक दर्शन का प्रथम, सब गुणों में प्रथम गुण है ये। इसके बिना तो अन्य गुण प्रकट हो ही नहीं सकते, और शंका संशय ही है तो क्या आगे बढ़ोगे? कुछ नहीं होगा। जैसे माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, अब उस बच्चे को मन में संशय हो रहा है, यही मेरे माँ बाप हैं क्या, कौन दूसरे हैं? संशय आ रहा है, क्यों? बाहर में जाकर के इधर उधर सुन करके आए, ये तुम्हारे माँ बाप वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, हैमरिंग कर दिया उनने, और हैमरिंग करने से उनको संशय में आने लगे, तो यही है कि दूसरे हैं, और जन्म के समय तो देखा नहीं। तो यहां पर भी ऐसा पक्का होना चाहिए, जिनेंद्र भगवान वाणी ही हमारे लिए श्रद्धान के योग्य है, बाकी किसी की वाणी श्रद्धान के योग्य नहीं है। और हमारे जो क्रियाकलाप दिन भर के रहते हैं ना, वो लोगों के अनुसार रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अनुसार रहते हैं, आगम के अनुसार, अरहंत भगवान के वाणी के अनुसार नहीं रहते। देखो परीक्षा करके कोई भी काम करते हैं तो लोग जो कहते हैं वही करते हैं हम, भगवान क्या कह रहे हैं ये चिंतन तक नहीं करते, और चिंतन करने के लिए भी स्वाध्याय भी नहीं है, और स्वाध्याय कराने वाला माहौल भी नहीं है, और कोई बतलाने वाले, उपदेश बतलाने वाले कोई मुनि महाराज भी, सच्चे गुरु भी नहीं है, क्या करोगे? तो आपके लिए एक ही वाणी बच जाती है, जो लोक में छद्मस्थ वाणी है उसके अनुसार चलो, तो उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं, और वो हमारी रूढ़ी बन जाती है, और फिर यही, इसी को लोक मूर्ता कहते हैं। लोक में रहने वाले लोगों के अनुसार चलना
पिकअप नहीं करेगा।
पूरा खत्म हो गया, अभी लाइटिंग बहुत हो गया ना, ऊपर की लाइटिंग, ये लाइटिंग। आज सोमवार है क्या? तो पहला दोष सर्वज्ञ की वाणी में संशय करना, ये दोष है, कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। संशय कब किया जाता है? ये ठीक है या नहीं है देखने के लिए किया जाता है। संशय कब करना चाहिए? वो ठीक हो तो संशय तो होता ही नहीं, ठीक है या नहीं इसको देखने के लिए भी संशय होता है, यानी शंका प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो शंका समाधान के लिए क्या विचार नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। शंका समाधान हो इसके लिए जरूर शंका प्रश्न करना चाहिए। जैसे भगवान ने उपदेश दिया तत्व पढ़ रहे हैं तो सुनते जाओ, बिल्कुल शंका नहीं करना, ऐसा नहीं, प्रश्न जरूर करना चाहिए। क्यों? उस तत्व को समझने के लिए हम कर रहे हैं। भगवान की वाणी पर हमारी श्रद्धा है लेकिन उसको डीप समझना है इसलिए शंका उठा रहे हैं। भगवान ने जो कुछ कहा हां भर दो ऐसा नहीं, उसमें शंका करो, डीप समझो उसको, किस तरह से वो सत्य है, किस तरह से सत्य है इसको समझने के लिए शंका करना, ये मिथ्या तो नहीं, वो तो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय है, वो चर्चा है, चर्चा है, स्वाध्याय है।
जब समझोगे वो शंका नहीं करेगा
ना? हाँ,
और अच्छी तरह से उतरेगा,
अच्छी तरह से उतरेगा। तो भगवान ने ये कहा है कि मैं कुछ जो कुछ भी ये सात तत्वों का उपदेश दिया हूँ, ये जो तत्व विषय है इसको छान छान करके, चिंतन चिंतन कर करके आप ग्रहण करो, ये कहा, इसमें गलती नहीं है। लेकिन इसको समझने में भी, समझने में आपकी गलती हो गई तो भटक जाओगे। समझ में नहीं आ रहा है तो शंका होंगी, उन शंकाओं को रहने नहीं देना।
समझने के बाद ही श्रद्धा पक्की होगी,
पक्की होगी, समझने के बाद ही श्रद्धा पक्की होगी। इसलिए भगवान ने कहा तर्क करो, तर्क करो, पर तर्क करने के लिए जब बैठते हैं तो पूरी श्रद्धा करके बैठो, ये भी बात आवश्यक है। श्रद्धा तो है ही नहीं, केवल तर्क करने बैठ गए तो मिथ्या दृष्टि है। वो दो जीव बैठे हैं और भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, स्वाध्याय में पढ़ा पढ़ा जा रहा है, व्यक्ति पढ़ करके सुना रहा है, और दो पात्र बैठे हैं सामने, एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को विश्वास नहीं है, वो भी तर्क करने आया है, और सम्यक दृष्टि को पूरा विश्वास है, वो भी तर्क करने के लिए बैठा है। ये सम्यक दृष्टि है, इसको भी कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसको भी कुछ ज्ञान नहीं है, दोनों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, अभी प्रारंभिक है। लेकिन एक सम्यक दृष्टि बन चुका है, ये कैसे बन गया? ये श्रद्धा से बना, श्रद्धा सम्यक दर्शन है। कैसी श्रद्धा? ये भगवान की वाणी है, ये बिल्कुल असत्य हो ही नहीं सकती, इतनी श्रद्धा। अभी तो हमने समझा नहीं उसको, समझना मुझे है, लेकिन विश्वास तो पूरा है, ये सत्य ही है, ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वासी जो सामने बैठा है वो सम्यक दृष्टि, कुछ भी नहीं जानता, अज्ञान में है अभी, फिर भी सम्यक दृष्टि।
लकड़ी के नाव नदी तो पार कर सकते हैं, ये तो उसको दृष्टांत हो गया है।
हाँ,
इसलिए वो लकड़ी के नाव में बैठा है, श्रद्धा किया है,
किया है, लकड़ी के नाव में बैठा है इसलिए श्रद्धा किया है, स्वयं भी तर रहा है और दूसरे को भी वो तारेगा। सम्यक दृष्टि जीव ही लकड़ी के नाव के समान होता है, मिथ्या दृष्टि जीव पत्थर के नाव के समान होता है। हाँ, स्वयं भी डूबेगा, दूसरों को भी डुबाएगा। तो भगवान की वाणी पर देखो, आप लोगों को कुछ स्वाध्याय नहीं, हम कैसे सम्यक दृष्टि बने ऐसा चिंता मत करो, सम्यक दर्शन अभी अभी बन सकते, एक सेकंड में। भगवान की वाणी पर विश्वास अटूट है क्या?
है।
तो बस बात ही खत्म है, सम्यक दृष्टि है।
भगवान की वाणी में श्रद्धा है इसलिए आपके सामने हम लोग बैठे
बैठे हैं।
पक्की
पक्की हाँ, सम्यक दर्शन की पायरी पक्की हो गई तो हमारा एक भी प्रतिमा लेंगे तो वो सार्थक बनेगा, उसका रिजल्ट सफल निकलेगा, वो फेल नहीं होगा। तो प्रतिमा को समझने से पहले इन दोषों को समझे, हम सम्यक दर्शन के क्या दोष हैं, कैसे रहना चाहिए। तो शंका दोष ये पहला दोष है, ये समझ में आ गया। कांक्षा दोष ये दूसरा है, इससे विरुद्ध गुण का नाम क्या होगा, निकांक्षित अंग, ये सम्यक दर्शन का अंग है। जो अंग होता है वो गुण होता है, और उस अंग को नष्ट करने वाला, उस अंग को कट करने वाला ये दोष होता है। तो दोष का नाम है कांक्षा और गुण का नाम है निकांक्षा। ये इसका अर्थ है धर्म करके उसके फल स्वरूप भौतिक सुख संपत्ति की कामना करना, धर्म करके उसके फल स्वरूप भौतिक सुख की कामना करना, ये दोष है। और नहीं करना ये गुण है। भौतिक सुखों की अपेक्षा नहीं करना, दान दे दिया, पूजन कर लिया, 10 दिन पूजन हो गया, इससे क्या मांग रहे हो, भौतिक सुख मांग रहे हो क्या? भौतिक सुख यदि मांगेंगे तो वो दोष है। किसका दोष? सम्यक दर्शन का दोष है। ये सम्यक दर्शन का जो दोष है, ये दोष सम्यक तो होने नहीं देता। तो व्यक्ति का आचरण कैसे हो, अंतरंग में कामना से रहित हो, और कामना से रहित कब हो पाता है, अनंत अनुबंधी कषाय जाने के बाद ही वह कामना मुक्त होता है। जब तक अनंत अनुबंधी कषाय का उदय है, जीव कामना सहित ही धर्म करता है, दान देगा स्वार्थ के लिए, पूजन करेगा स्वार्थ के लिए, यानी भौतिक स्वार्थ की उपलब्धि के लिए, शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए करेगा। ये किसका लक्षण है, किस कषाय का लक्षण है? ये अनंत अनुबंधी कषाय का लक्षण है। तो इस कषाय को छोड़ना कोई कठिन बात है क्या?
नहीं।
कुछ भी कठिन नहीं है। अनंत अनुबंधी की पहचान यही है कि हम कामना सहित धर्म कर रहे हैं, यही पहचान है उसका। और पहचान हो गई है तो उसको त्याग दो फिर। हम कामना सहित कभी भी धर्म नहीं करेंगे, किसी भी भौतिक कामना सिद्धि के लिए कभी भी धर्म नहीं करेंगे, लेकिन अनादिकाल से यही किया है क्या? नहीं किया है। हम मंदिर क्यों गए? मांगने के लिए गए। भी इसलिए गए कि घर में जो कष्ट हैं उससे परेशान हैं, इसलिए जा रहे हैं, वो परेशानी समाप्त हो इसलिए गए। तो घर के जो परेशानियां हैं ये किस वजह से हैं? कर्म के वजह से हैं, कर्म के वजह से हैं। और ये कर्म के वजह से हैं तो भगवान क्या करेंगे? क्या कर्मों को हटाएंगे क्या? वो हमारे कर्मों को भगवान हटा सकते हैं क्या? तो फिर उनके पास जा करके हमारे संकट को दूर करो ये कह रहे हैं। तो कर्म को दूर करने की क्षमता भगवान के पास है तो हमारे कष्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे।
यानी कि कामना पूर्ति के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए।
बिल्कुल, ये नियम बना लेना चाहिए, ये संविधान है। कामना पूर्ति के लिए मंदिर जाना ही नहीं चाहिए, और यदि जाते हैं तो जाना भी व्यर्थ हो रहा है। देखो, अज्ञानी है, जा रहा है कामना पूर्ति के लिए जा रहा है, तो कामना पूर्ति हो रही हो तो अच्छा है। कामना पूर्ति हो सकती है क्या? क्योंकि आपके कर्मों के उदय को टालने की क्षमता भगवान को नहीं है, तो आप संकट से कैसे मुक्त हो सकते हैं और आपकी कामना की पूर्ति कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं है, और इसलिए ये मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान है क्योंकि ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, ये व्यर्थ का ज्ञान है, इससे कुछ भी सिद्धि होती नहीं है। हिंग्या का केस, धर्मा मार, धर्मा मार्त मारता याडीपत्र 10 वर्ष कर दू। याडीपत्र 10 वर्ष कर दू ना ज्ञान सुख सिगले, ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಯ್ದನು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಟಾಯಿಸಿನ ಹಿಂಗಂದ್ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತಾರೇನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದಾರು ಅವ್ರ, ಒಂದ್ ಜರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಡಿಪತ್ರ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಬಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಂಟಾಳಿಸಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಧರ್ಮ ಕರ್ತಿ ಕರ್ತಿ 50 ಸಾಲ ವ್ಯತೀತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸುಖ ನೈ ಮಿಲ, ಈ ಕೈಸಾ ಧರ್ಮ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಈ, ಐಸಾ ಲಗತಾ ಹೇ ಜೀವ ಕೋ, ಲೇಕಿನ್ ಐಸಾ ಲಗನಾ ಚಾಹಿ ಕೆ ನೈ ಲಗನಾ ಚಾಹಿ, ನೈ ಲಗನಾ ಚಾಹಿ, ಧರ್ಮ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಭಿ ಯದಿ ಆಪ್ಕೋ ಸುಖ ನೈ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ತೋ ಅಚ್ಛಾ ಹಿ ಹೇ, धर्म से विश्वास को खत्म नहीं करना, ये अच्छा है, क्योंकि ज्ञानी हैं आप कर्म की निर्जरा तेजी से कर रहे हैं, अब आपने इतना पाप कमाया है पूर्व भव में, जो 50 साल तक भी साधना करे धर्म की तो निर्जरा नहीं हुई, निर्जरा नहीं हुई। आदिनाथ भगवान ने मुनि दीक्षा ली, कितनी परम चरम विशुद्धि होती है इनके मन की आत्मा की, और वो 6 महीने तक दुख दिए कर्म, तो भगवान भी उनको नाश नहीं कर पा रहे हैं ना, अपने कर्म खुद के कर्मों को भगवान भी नाश नहीं कर पाए, 6 महीने तक जो बंदे थे ज्यों के थे उन थे, और उनके ऊपर
कर्म सिद्धांत पर इतना अकाट श्रद्धा है, हाँ, फिर भी कुछ स्तोत्र में ऐसा लिखा है भगवान की स्तुति करने से ये पुत्र प्राप्ति होती है, ये उनका कीर्तन को धनवान बना देता है, ये जो है ये तो सब मिथ्या ही अंधश्रद्धा
है। बिल्कुल बिल्कुल मिथ्या मत, एकांत नहीं है, देखो उसके पीछे अभिप्राय है, उस अभिप्राय तक पहुंचने पर ही वो हमको सम्यक लगेगा, और नहीं पहुंचते हैं तो वो मिथ्या भी लगेगा, दोनों दोनों बातें उसमें हैं। देखो कोई भी व्यक्ति भगवान के पास गया, मेरे को संतान नहीं भगवान, तो भगवान तो संतान देते नहीं, ये निश्चित, ज्ञानी है तो उसको निश्चित मालूम है, ये ज्ञानी जा करके कह रहा है, अपने दुखड़े को व्यक्त कर रहा है, हे भगवान मैं संतानहीन हो गया, इतना ज्ञानी हूँ, कर्म सिद्धांत जानता हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे संतान रहित अवस्था क्यों प्राप्त हो रही है, ये कहेगा कि नहीं कहेगा, इतना सब कुछ कर रहा हूं तो क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे जानता है मुझे क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान से पूछ रहा है, ये कर्म का फल है ये जानता है ज्ञानी, लेकिन भगवान की भक्ति करेगा तो भक्ति की भाषा में कहेगा ही, ये भक्ति की भाषा है, वो अभिलाषा नहीं है, कामना नहीं है, अभिलाषा तो रख ही नहीं सकता, वो ज्ञानी है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, अपने दुखड़े को व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने। मैना रानी ने किसके सामने जाकर के दुखड़े व्यक्त किए, गुरु के सामने, तो अभिलाषा है क्या, नहीं है, मिथ्या दृष्टि है क्या, वो नहीं है, सम्यक दृष्टि है, कामना रहित तो धर्म ही कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के संकट को देखते हुए गुरु के पास गए हैं, हे गुरु महाराज हम ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं कि ये कर्म का फल है, लेकिन इन कर्मों के निर्जरा के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बताओ,
मेरा कर्म हटे,
मेरा कर्म हटे और ये दुख कम हो जाए, तो महाराज ने कर्म को हटाने का मार्ग बताया। महाराज ने मैना सुंदरी को दो प्रतिमा दी। दो प्रतिमा क्यों दी? प्रतिमा यदि नहीं लेंगे तो एक समय में असंख्यात गुणित निर्जरा नहीं हो सकती। गुण श्रेणी निर्जरा तो प्रतिमा में है। कितना अच्छा मार्ग बताया उन्होंने, गुण श्रेणी निर्जरा का मार्ग बताया। गुणित रूप से निर्जरा जिसमें होती है, और चतुर्थ गुण स्थान में ये गुणित रूप से निर्जरा नहीं होती है। और आप चतुर्थ गुण स्थान में हैं, सम्यक दृष्टि है दोनों, पति पत्नी। पति तो क्षायिक सम्यक दृष्टि था, श्रीपाल राजा, और ये पत्नी क्षौक्षम सम्यक दृष्टि है, मैना रानी। उनका सम्यक तो मिटने वाला नहीं है, उनको अकाट्य कर्म सिद्धांत पर विश्वास है कि मेरे कर्म के वजह के कारण से ही ऐसा संकट आया हुआ है। ये किसी भव में मैंने किसी मुनि महाराज को कुछ कहा होगा, उपसर्ग किया होगा, या किसी जीवों का अंगों पांगों का घात किया होगा, या शील वृत्तियों को दोषण लगाया होगा, इसका फल है मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। ये जान रहा है श्रीपाल राजा, चिंतन भी कर रहा है, लेकिन इन अशुभ कर्मों से मुक्त होने का मार्ग कौन दिखाएगा हमें? देवशास्त्र गुरु। और वो गुरु के निकट पहुंच गए और दोनों गुरु के चरणों में बैठ करके मार्गदर्शन ले रहे हैं। हम कर्म की निर्जरा कैसे कर सकते हैं? और गुरु गारंटी नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा कर्म का निर्जरा इतने टाइम में खत्म हो जाएंगे। तुम जितनी विशुद्धि बढ़ाओगे, उस विशुद्धि के कारण से अशुभ कर्म हटेंगे और ये रोग अपने आप ठीक होने वाला है। यही एक मार्ग है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। तो दोनों को प्रतिमाधारी बनाया उन्होंने, श्रीपाल राजा को भी और मैना सुंदरी को भी, दो प्रतिमा दी। और वो प्रतिमाएं, दोनों प्रतिमाएं सम्यक तो सहित दिया क्या सम्यक तो रहित? सम्यक दृष्टि तो थे ही वो पहले से, पर अब वो प्रतिमा लेने के लिए आए हैं। तो 12 अनुवृतों को दे दिया, उपदेश दे दिया 12 अनुवृतों का, और फिर उसके अनुरूप उन्होंने अपनी विशुद्धि बढ़ा ली। और एक और माध्यम दे दिया, भगवान के भक्ति में मन लगाओ, सिद्ध चक्र विधान करो, उससे भगवान के गुणों में भक्ति करते करते विशुद्धि बढ़ेगी और उस विशुद्धि से कर्मों पर असर होगा। और कर्मों पर असर होगा, कर्म की निर्जरा होगी, तो ऑटोमेटिक ये संकट दूर होगा ही होगा। घबराना नहीं, संकटों से सम्यक दृष्टि जीव घबराता नहीं है। मेरे पूर्व में किए हुए पाप का फल है ये, ऐसा समझकर भगवान की भक्ति में मन लगाता है। और मान लो उन दोनों के मान लो मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा को ये कष्ट जीवन में दूर नहीं होने वाला होता तो नहीं होगा, इतना सब कुछ करने के बाद भी। महाराज ने कहा वही मार्ग कहा जिससे ठीक हो सकता है, उन्होंने तो कहा। अब वो करना भी प्रारंभ किया, पर कुष्ठ रोग बहुत दिन तक, 500 साल तक दूर नहीं हुआ। तो क्या धर्म पर, महाराज के वचनों पर से, धर्म पर से विश्वास उड़ा देना चाहिए? सब कुछ किया और फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो धर्म पर से विश्वास उड़ना चाहिए क्या? नहीं, धर्म पर से विश्वास को हटा नहीं सकते आप। आजकल अज्ञानी जीवों का ये ज्यादा होता है, धर्म करते करते वो ये सोचने लगते हैं कि हमको कुछ मिला ही नहीं। महाराज ने बताया सिद्ध चक्र विराधन करो, हम भी कर दिया, और उपवास करो वो भी कर दिया, जाप दे दो जाप भी दे दिया, कुछ नहीं, फायदा ही नहीं हुआ। तो ऐसा विश्वास उड़ा देना चाहिए क्या? जब भी कर्म की निर्जरा होगी इसी से होगी, ये की मार्ग है।
हाँ, हल्के दर्शन, फल के दर्शन और कर्म निर्जरा की सच्चा दर्शन,
सच्चा दर्शन,
ये तीन बातें हो गई उधर,
तीन बातें हो गई। जब भी कर्म जाएगा इसी विधान से जाएगा ना, विशुद्धि बढ़ाने से ही जाने वाला है, और विशुद्धि यदि आपने खत्म कर दिया, विश्वास ही उड़ा दिया, तो विशुद्धि नीचे आ गई। अब कर्म निर्जरा होने के बजाय और बढ़ेगा, और बढ़ेगा वो। तो ये बातें कोई करता नहीं, विचार करता नहीं, ये बातें चर्चा में आती नहीं। और धर्म करते हैं तो करने के लिए आते हैं, उत्साह से भी करते हैं, भक्ति से भी करते हैं, जब तक करते 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 हैं कुछ नहीं मिला तो भाग जाते हैं। बाय बाय टाटा धर्म, कभी नहीं आएंगे वो धर्म के क्षेत्र में। धर्म ऐसा किया नहीं जाता, अज्ञान के साथ धर्म करेंगे तो यही होगा। श्रद्धा के साथ धर्म करना चाहिए, और वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? दृढ़। एक ही मार्ग है ये। हाँ, धर्म ही हमारे कर्मों को काटने का साधन है, धर्म ही हमारे दुखों को समाप्त करने का साधन है। और वह धर्म क्या है? तो हमारे आत्मा की विशुद्धि का नाम धर्म है, आत्मविशुद्धि, पवित्र भावों का नाम धर्म है। और ये पवित्र भाव देवशास्त्र गुरु के सामने आने से बन जाते, क्या संसार में बैठने से बन जाते हैं? संसार में बैठे रहेंगे तो बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो ये है अनंत अनुबंधी को हटाकर धर्म करना, ये दूसरा काम है, इस दोष को हटाना चाहिए। तीसरा है, टाइम हो गया, करंट टाइम हो गया, आठ, हाँ नहीं, सर्विस जाने वालों को सर्विस है। सच है,
लेकिन वो भाव अंदर जो है मंदिर में जाते हैं तो पहला जो दिखा है उस पर ही हमारा श्रद्धा बैठता है। वो भगवान हमको देगा, ये देगा देगा, नहीं देगा तो दूसरे धर्म के उधर जाता है, और उधर उनको प्राप्ति हो गई तो भगवान ने हमको दिया, ऐसा होता है। ये जो मिथ्या भाव है ये तो समझ के
होता है ना, ये हमरिंग हो जाएगा तो वो ना हो पाएगा। देखो ये हमरिंग हो जाएगा, यही 50 साल चलेगा, ये भी पहला पासुन बन जाएगा। ये 50 साल का पहला पासुन बन सकता है।
तो इसकी भगवान को 6